जय श्री द्रौपद महाराज की जय। श्री राधा के दर भगवान की जय। श्री गौर निताय की जय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन शुद्ध भगत चरण रेणु भजन जानु कूल। शुद्ध भगत भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम गति करमूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम गति करमूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम गति करमूल। भगत परम सिद्धि प्रेम गति करमूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन माधवती थी भगत जननी जतन पालन करी। माधवती थी भगत जननी जतन पालन करी। माधवती थी भगत जननी जतन पालन करी। भगत जननी जतन पालन कृष्ण बसती बसती बोली। कृष्ण बसती बसती परम आदर बोली। आशुद भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन गौर यामार जे सब साने करल ब्राह्मण अंगे। ये सब साने करल ब्राह्मण से सब सान हेरी बयानी। से सब सान से सब सान हेरी बयानी। से सब प्रणयी भगवत संगे प्रणयी आशुत भगत चरण रे शुद्ध भगत चरण रे भजन भुजंग भाग सुनित मन अवसर सदयाते भुजंग भाग सुनित मन अवसर सदयाते गौरविहित कीर्तन सुनी गौरविहित गौरविहित कीर्तन सुनी गौरव कीर्तन आनंद हृदय नाते आनंद हृदय शुद्ध भगत चरण रे भजन अनुशुद्ध भगत चरण रेणु भजन युगल मुरती देखिया मोरा परम आनंद हो परम आनंद प्रसाद सेवा करीते हय प्रसाद सेवा सकल प्रपंच जय सकल प्रपंच आशुत भगत चरण रे भजन कहे भजन बेची रोहित लोक भाई भजन बेची रोहित लोक चरण सिंधु देखिया गंगा चरण देखिया गंगा सुख न सीमा पाय सुख न सीमा आशुत भगत चरण रेणु भजन भगत तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो संजानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो संजानी गौर प्रिया शाक सेवने गौर प्रिया जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक आशुत भगत चरण रेणु भजन अनुशुत भगत चरण रेणु भजन भगति भजन अनुकूल पाय जा भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाय जा प्रति दिवस परम सुखे प्रतिदिन परम प्रति दिवस परम सुखे प्रति स्वीकार कर लेता स्वीकार कर लेता आशुदेव चरण रे भजन चरण रे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जशोदानंदन जगन चंदन यशोदानंदन व्रज चंदन यशोदानंदन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा यमुना तीरा वन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल नीता गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय भगवान की जगन्नाथ सुभद्रामैया की जय गौर नित्याय की जय प्रभुपाद लीलामृत की जय एकादशी महामहोत्सव की जय विदाय गौर हरि प्रमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयस्तके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीपदं साधजातं सान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गौराङ्गी राधेन्द्रेश्वरे कृपा सिन्धुरेव च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज हम प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करेंगे। शीर्षक है झांसी भक्तों का संग। हम भी झांसी के भक्तों के साथ में थोड़ा आस्वादन करेंगे। डॉक्टर शास्त्री का अनुभव बता रहे हैं। उनका हृदय बराबर इस विचार से युद्ध होता रहता कि संपूर्ण संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक खाने पीने और मस्ती में व्यस्त है, इसलिए वे सारे दिन घूमते रहते और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते रहते। अपने ध्येय के संबंध में वे लोहे के समान दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासी थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था, वे दृढ़ व्रत थे। सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण नाम के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, अस्तु वे हमेशा चर्चा करते रहते। कभी कभी रात भर मुझसे चर्चा करते, कभी कभी मैं उब जाता। मैं प्रार्थना करता, कृपया तंग न करे, कृपया मुझे सोने दे। और वे बद्ध मिशनरी कार्यकर्ता एक युवा पुरुष की तरह थे। मैं युवा लड़का था और वे ठीक मेरे मित्र जैसे थे, मेरे अग्रज जैसे, मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक जैसे थे। क्योंकि प्रचारक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। वे सदैव श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते थे। संपूर्ण भगवत गीता उनके जीवन में चरितार्थ थी। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरना व्यवहार में उसे चरितार्थ करना था। वे अपने मिशन के लिए मुझे पकड़ने की हरदम कोशिश कर कोशिश में थे। और मैं हरदम भाग निकलने की कोशिश में था। मैं नहीं सोच पाता था कि वे संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे, यद्यपि वे इसी बात पर हमेशा जोर देते थे। जब डॉक्टर शास्त्री अपने दवाखाने में व्यस्त होते तो अभय वहां बैठते और मरीजों से बात करते। कभी कभी वे दवाओं के नुस्खे बताते, लेकिन अधिकतर प्रचार ही करते। अब झांसी में रहकर प्रचार करने से वे संतुष्ट थे। वहां जीवन था, लोग उनके प्रचार के प्रति ग्रहणशील थे। हरे कृष्ण कीर्तन का उनका आग्रह वे स्वीकार करने लगे थे। हर वस्तु का त्याग कर फल के लिए कृष्ण पर निर्भर रहते हुए दिन रात प्रचार करने की उनकी अभिलाषा और संकल्प में वृद्धि हो रही थी। वे नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाषण और हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रम हो जाते। रविवार को वे साधना मंदिर में भाषण देते थे, किसी और दिन गीता मंदिर में, किसी दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और नियमित रूप से लोगों के घरों में उनका भाषण होता रहा। दुकानदार कवि मिस्टर राममित्र अपने घर के निकट एक शिव मंदिर की देखभाल करते थे। अभय ने वहां कीर्तन करना और भाषण देना आरंभ कर दिया। कभी कभी मिस्टर मित्र साधना मंदिर में भगवत गीता पर हिंदी में भाषण करते थे और अभय वहां उपस्थित होते थे। कभी कभी अभय मिस्टर मित्र की बर्तनों की दुकान पर चले जाते थे। दुकान झांसी के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में थी और जन संकुल सड़क में खुलती थी। अभय एक सामान्य ग्राहक की तरह स्टेनलेस स्टील की बाल्टियों, प्लेटों, कटोरों और लोटों के अंबारों के बीच बैठ जाते और मिस्टर मित्र और दोस्तों से श्री चैतन्य चरितामृत के संबंध में बातें करते। यहाँ कभी कभी वे मिस्टर मित्र से उनके प्रकाशित कविता संग्रह और साहित्यिक रुचा के विषय में सुनते। मिस्टर मित्र ने देखा कि अभय की इच्छा पूरे झांसी नगर को कृष्ण भावनामृत से जीवंत बना देने की है। अभय ने श्री चैतन्य चरितामृत से उदाहरण दिया, जो बड़े सौभाग्य से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है उसे अपना जीवन पूर्ण बनाना चाहिए और तब कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहिए। अभय आगे कहते, मिस्टर मित्र, सारा संसार हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है। मिस्टर मित्र सिर हिला देते और उनके नेहरू के समान चेहरे पर मुस्कान छा जाती। लेकिन मिस्टर मित्र ने देखा कि अभय चाहते थे कि लोग केवल उन्हें सुने ही नहीं, उससे कुछ अधिक करे। वे चाहते थे कि लोग कुछ करें। एक बार मिस्टर मित्र ने अपनी पुस्तक की एक प्रति अभय को भेज दी। उन्होंने एक विख्यात व्यक्ति द्वारा लिखी प्रस्तावना दिखाते हुए बार बार कहा कि महान साधु विनोबा भावे ने कविताओं को बहुत पसंद किया है। जब मिस्टर मित्र को ज्ञात हुआ कि अभय नियमित रूप से दूध पीने वाले हैं, तो उन्होंने नित्य अपनी गाय का ताजा दूध उन्हें देना आरंभ किया। उनकी गाय श्यामा थी और मिस्टर मित्र ने कहा कि श्यामा गाय का दूध विशेष रूप से अच्छा होता है। अभय ने मिस्टर मित्र को आसपास के गांवों में प्रचार के लिए एक कीर्तन दल के साथ चल जाने को आमंत्रित किया, लेकिन मिस्टर मित्र ने इनकार कर दिया। वे अपनी दुकान देखने के लिए किसी को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। डॉक्टर सिद्धि एक दूसरे युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। डॉक्टर सिद्धि एक दूसरे युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जिन्होंने तुरंत कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अभय की योग्यताओं में रुचि दिखाई। डॉक्टर सिद्धि वे मेरे स्थान पर कई बार आए। मेरी छत पर एक कीर्तन कक्ष है और वे उसमें तथा गीता मंदिर में कीर्तन करते। हम नित्य थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी जाते थे। जब कीर्तन प्रवचन या भाषण होते तब वातावरण बहुत शुद्ध पवित्र और शांत था। वे हारमोनियम बजाते थे। लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। मुख्य काम कीर्तन करना और भगवद गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित पर भाषण देना था। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं भी उनसे प्रेम करता था। राधेलाल मल्लिक जो गीता मंदिर और साधना मंदिर के सचिव थे अभय से प्रायः मिलते थे। राधेलाल मल्लिक मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित था। राधेलाल मल्लिक कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित था। उनके साहचर्य में मैं सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वे विशेष सजग थे। वे उस समय लिख भी रहे थे। गीता मंदिर के अध्यक्ष और मैं दोनों स्वेच्छा से उनका भोजन बनाने को तैयार थे। विशाल अंती जलाशय के उस ओर स्थित सुरम्य भारती भवन मंदिर संकुल का पता उन्हें एक दिन तब लगा जब वे राधेलाल मल्लिक के साथ सवेरे भ्रमण कर रहे थे। अंती काल के नाम से विख्यात जलाशय के चारों ओर का वातावरण शांत था और आबादी विरल थी, किंतु यह सिप्री रोड के निकट था जो झांसी शहर और सिप्री बाजार का आम रास्ता था। अभय ने मिस्टर मल्लिक से मंदिर के बारे में पूछताछ की और वे दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू पगडंडी पर चलने लगे जो मंदिर के अहाते के सिंह द्वार में प्रवेश करती थी। वहां उन्होंने देखा कि नीम और आम के बाग से आच्छादित कई एकड़ जमीन पड़ी थी। मुख्य भवन राधा स्मारक था। वह एक सैंपल प्रार्थनालय की तरह छोटा था, परंतु उसके अंगों के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। अष्ट भुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित वह तराशे हुए लाल और श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों पर खड़ा था। उसके सिर पर पत्थर का गुंबद था। अपने ऊपर उठे शुंडों पर भाग्य की देवी लक्ष्मी को धारण करने वाले 2 हाथी प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर में बने ध्वज पट और लाल हरी और नीली धारियों वाली आकृतियों से स्मारक के अलंकरण युक्त किंतु भारीपन के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। प्रवेश द्वार पर नागरी लिपि में राधा स्मारक शब्द अंकित थे और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। जब अभय ने पत्थर के मंदिर के एक और संस्कृत में अंकित हरे राम 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 हरे हरे देखा तब वे राधेलाल मल्लिक की ओर मुड़े और दृढ़ शब्दों में बोले, भगवान ने यह भवन मेरे प्रयोग के लिए बनाया है। उस क्षण से अभय उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। मिस्टर मल्लिक ने बताया कि वह मंदिर सन 1939 में संपन्न वैष्णव भूस्वामी राधा भाई के स्मारक के रूप में बनवाया गया था, लेकिन इस समय उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्रभाकर मिश्र जिनके अभय कई अवसरों पर मिल चुके थे, उसके कुछ कमरों में रह रहे थे, अन्यथा वह वीरान पड़ा था। मिस्टर मल्लिक और अभय ने डॉक्टर मिश्र को मुख्य भवन में उनके आवास से खोज निकाला, और जब डॉक्टर मिश्र ने अभय का उत्साह देखा तो उन्होंने उन्हें अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर मिश्र ने इस बात की पुष्टि की कि रविवार को सवेरे गीता अध्ययन के अतिरिक्त मंदिर में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा था। उन्होंने अभय का स्वागत किया कि वे वहां अपने लिखने और प्रचार का कार्य करें। अभय को विचार पसंद आया। भूमि का सर्वेक्षण रुचिपूर्वक करते हुए वे तुरंत इस विचार में लग गए कि भवनों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। एक दूसरे बड़े भवन में भी जो पत्थर के खंभों और अग्रभाग से युक्त था, एक हाल और 5 कमरे थे। अभय ने मन में हर कमरे के लिए योजना बनाई। इस कमरे में जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं, कीर्तन और भाषण होंगे। इस कमरे में भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह होगा। इन कमरों में आवासी ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे। इसमें अतिथि और उस कमरे में कार्यालय होगा। इस कमरे में छपाई की मशीन रहेगी। एक गाय के चरने के लिए वहाँ चारागाह भी था। मंदिर का आहाता अपने में स्वतंत्र इकाई था। कीर्तन प्रसाद और प्रवचन के लिए उसमें सैकड़ों आदमी समा सकते थे। बैक टू गॉडहेड पत्रिका वितरित करने के लिए यहाँ से प्रचारक भी जा सकते थे। भगवान चैतन्य की कृपा से कुछ को बाहर भी भेजा जा सकता है। प्रभुपाद जी की ये सोच है। उसके पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि इस कमरे में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह रखेंगे, इस कमरे में ब्रह्मचारी रहेंगे, इस कमरे में सन्यासी रहेंगे, इस कमरे में अपना जो टेप रिकॉर्ड का मशीन रहेगा। प्रभुपाद जी ऐसे विचार कर रहे हैं। जब अभय अपने साथियों सहित आहाते में घूमकर प्रसन्नतापूर्वक कर रहे थे कि आश्रम की स्थापना के लिए वह उपयुक्त स्थान था, उनके साथियों ने वह कहकर उनका उत्साह वर्धन किया कि मिस्टर रेवाशंकर भयल को, जो राधा भाई के वंशजों की सभी संपत्तियों की व्यवस्था करता के रूप में करते थे, अभय के वहां रहने में कोई आपत्ति न होगी। अभय ने पूछा कि मकान मालिक उन्हें सभी मकान क्यों नहीं दे सकते थे। वे बर्बाद हो रहे थे। यदि सचमुच उन्हें राधा का स्मारक होना था तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधा के पूज्य भगवान थे। अभय दृढ़ निश्चय थे और उनके मित्र उनकी सहायता करने को राजी हो गए। पहले वे राम मित्र से मिले, जिन्होंने कहा कि भयल उनके इतने घनिष्ठ है कि उनकी प्रार्थना पर ही शायद वे वह जगह उन्हें दे देंगे। डॉक्टर शास्त्री भी भयल के पास यह बताने के लिए जाना चाहते थे कि झांसी के लोग कितना अधिक चाहते हैं कि यह जगह अभय को मिल जाए। जब देवाशंकर भयल की भेंट अपने मित्र राम मित्र से हुई तो इस अवसर पर अभय डॉक्टर शास्त्री राधेलाल मल्लिक प्रभाकर मिश्र और झांसी की एक शिक्षित युवती सूर्यमुखी, शर्मा आदि लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने मामले को कई दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया और भयल सबको सुनते रहे। वे सहमत हुए कि उस समय उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था और प्रस्तावित उपयोग अच्छा प्रतीत हो रहा था। वे राजी हो गए कि भाई जब तक चाहे उस स्थान की सुविधाओं का उपयोग अपने भक्त संघ के लिए कर सकते हैं। और अभय की प्रार्थना पर वे संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गए। दोनों ने हाथ मिलाए। मालिक की ओर से भयल ने भारती भवन की संपत्तियों को दान के रूप में अभय चरण दे और उनके भक्तों के संघ को दे दिया। दिसंबर और जनवरी के अभय ने भक्तों के संग लीग ऑफ डिवोटीज का चार्टर तैयार किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वे जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहते थे। अपने लक्ष्यों को उन्होंने लिखित रूप देना आरंभ ही किया था कि योजना का रूप तुरंत फैलने लगा। झांसी के बाहर, भारत के बाहर निसंदेह भक्त झांसी के नवयुवकों के लिए था। वे उसमें बड़ी रुचि प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन अभय के डॉक्टर में संध्या की कक्षाओं और कीर्तन से अधिक का विधान था। यह एक विस्तृत योजना थी जिसमें समाज के चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का समावेश था, जो अपने में एक विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन की योजनाएं लिए हुए थी। चार्टर में भावी सदस्यों के लिए एक परीक्षण काल था। उसमें आध्यात्मिक दीक्षा का विधान था। उसमें संघ और सदस्यों के बीच आर्थिक आदान प्रदान की व्यवस्था थी। उसमें प्रचारकों के लिए आवास का प्रबंध था और निषिद्ध कार्यकलापों का वर्णन था, जैसे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मद सेवन, विशुद्ध शाकाहारी भोजन के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण, जुआ खेलना और अनाथ आवश्यक मनोरंजन या क्रीड़ा रति। लखनऊ में भक्त संघ की रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेंडम आप एसोसिएशन की जरूरत थी। इस मसौदे में, जिसमें सोसाइटी के उद्देश्यों का उल्लेख होना था, अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को जारी रखने का अपना मंतव्य प्रकट किया। अपने दो भाइयों की भांति उन्होंने गौड़ी मठ के विक्षण के पश्चात अपने अपने नए मठ स्थापित कर लिए थे। अभय गौड़ीय संप्रदाय की भक्त संघ नाम से एक नई शाखा का निर्माण कर रहे थे। वे केवल कुछ मकानों के स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे थे, वे ये कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, जिसका विस्तार विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में होना था। उनके इरादे बिल्कुल अनुदार नहीं थे, वरना उनका लक्ष्य संसार भर में आध्यात्मिक विकास के केंद्र स्थापित करना था। अभय ने लिखा, भगवान चैतन्य परम भगवान तक पहुंचने की दिव्य प्रक्रिया का उद्घाटन किया और उनकी शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो तर्क की दृष्टि से असंगत हो और सभ्य संसार द्वारा स्वीकृत किसी धर्म के विरुद्ध हो। संघ के लक्ष्यों की गणना में उन्होंने सारे संसार में केंद्रों की स्थापना को स्थान दिया। इन प्रकार वे संघ को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा तथा सभी राष्ट्रों, धर्मों और जातियों के लोगों से नए सदस्य भर्ती करके आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। संघ के कार्यों में बहुत सी भाषाओं में साहित्य और बैक टू गॉडहेड मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी था। अभय ने अपने मेमोरियल ऑफ एसोसिएशन पर आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। फिर उन्होंने लखनऊ की गाड़ी पकड़ी और 4 फरवरी को 50 रुपये जमा कराकर अपना आवेदन पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद वे झांसी लौट आए। प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताय गौर हरि विमानंद। Thank you.